एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, जिसके हृदय से बहता है दया का सागर, जिसकी महिमा से जीवन होता है सफल। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जीवन का तू ही मार्ग है। अपनों से भी बढ़कर तूने किया है प्यार, तेरी हो जय जयकार। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, जिसके हृदय से बहता है दया का सागर, जिसकी महिमा से जीवन होता है सफल। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे सच्चाई को, तेरे गुण बातों को जानना चाहते हैं, हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हमारे मनों को खोल दे। पिता मैं अपने श्रोताओं के लिए विशेषकर प्रार्थना करता हूँ, तो उन्हें समझ शक्ति दे, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि वे तेरे सच्चाई को, तेरे वचन को समझ सके और तेरा राह में चलने सके। मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है 6 दिनों में सृष्टि। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें जो मिलता है निर्गमन 20:11 में। यहाँ कहता है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। प्यारो, बाइबल सिखाती है कि हमारे ग्रह के आवास और जीवन रूप दोनों ही परमेश्वर ने 6 शाब्दिक लगातार 24 घंटे के दिनों में बनाए थे। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम करके उसे आशीर्वाद देकर और पवित्र बनाकर इस गतिविधि का उत्सव मनाया। परमेश्वर ने 1 हफ्ते के दरमियान सारे सृष्टि को बनाया जो हम इस पृथ्वी में देखते हैं और अपने आप में देखते हैं। इस और अगले पाठ की ओर की एक ऐसी शिक्षा पर केंद्रित होंगे जिसे धर्मनिरपेक्ष विज्ञान अविश्वसनीय और भोला भाला मानता है कि इस ग्रह पर जीवन की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा केवल कुछ 1000 साल पहले केवल 6 दिनों में हुई थी। यह विशेष बाइबल शिक्षा जो कभी आम तौर पर स्वीकृति थी, आधुनिक दुनिया में लगभग अस्वीकार कर दी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिकों के सामने कई चुनौतियां और कठिनाइयां हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वैज्ञानिक आंकड़ों की कुछ संभावित और व्यवहारिक व्याख्याएं मौजूद नहीं हैं। हालांकि यहां हमारा काम यह निर्धारित करना है कि बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि भविष्यवाणी की आत्मा हमें इस विषय पर क्या बता सकती है, क्योंकि विकासवाद का सिद्धांत पहले से ही उन चुनौतियों में से एक था जिनका हमारे पूर्व प्रवर्तकों को सामना करना पड़ा था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 1 से 2 अध्याय का 3 पद में हम इस पृथ्वी का सृष्टि 1 सप्ताह के अंदर में हम पाते हैं। उत्पत्ति एक का एक से दो का तीन के अनुसार परमेश्वर ने हमारे वर्तमान संसार और उस पर रहने वाले विभिन्न जीवों को बनाने में कितना समय लगाया उसको बतलाता है। ये आयतें हमें संकेत देते हैं कि ये सचमुच 24 घंटे के दिन थे। इस वर्णन को हम पढ़ेंगे तो हमें इसका इशारा मिलेगा। इब्रानी में दिन के लिए शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो योम है। यह सच है कि कभी कभी योम का अर्थ अनिश्चित काल भी हो सकता है। कुछ विद्वानों ने इसका प्रयोग यह मानने के लिए किया है कि सृष्टि के 6 दिन विशाल समयावधियां थी, जैसे कि अंग्रेजी में डे शब्द का अर्थ होता है। वे अक्सर अपनी बात के समर्थन में भजन संहिता 90:4 जैसे अंशों का हवाला देते हैं। हालांकि योम का सामान्य प्रयोग 24 घंटे के दिन के लिए होता है, अनुवाद में एक बुनियादी नियम यह है कि सामान्य अर्थ का ही प्रयोग किया जाना चाहिए जब तक कि संदर्भ स्पष्ट संकेत ना दे कि कोई अलग अर्थ अभिप्रेत है। उत्पत्ति एक में ऐसे संकेत अनुपस्थित हैं और ऐसे कई संकेत हैं जो सीधे तौर पर एक वास्तविक 24 घंटे के दिन की ओर इशारा करते हैं। एक तरीका है कि दिनों को क्रमिक संख्याओं पहला दिन, दूसरा दिन आदि द्वारा नामित किया गया है। यह केवल तभी किया जाता है जब 24 घंटे का दिन अपेक्षित हो। दूसरा यह है कि दिनों को और शाम हुई और सुबह हुई अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया है। पुनः यह हिब्रू में केवल तभी किया जाता है जब एक वास्तविक 24 घंटे के दिन का अर्थ होता है। एलन वाइट ने पहले सप्ताह के दिनों को किस प्रकार देखा, आइए हम इसे पढ़ते हैं। आत्मिक उपहार खंड 3 पृष्ठ 90 में लिखा है, फिर मुझे सृष्टि की ओर वापस ले जाया गया और दिखाया गया कि पहला सप्ताह जिसमें परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि का कार्य किया और 7वें दिन विश्राम किया, हर दूसरे सप्ताह के समान ही था। महान परमेश्वर ने सृष्टि के दिनों और विश्राम के दिन में समय के अंत तक आने वाले सप्ताहों के लिए पहले चक्र को एक नमूने के रूप में मापा। परमेश्वर हमें प्रत्येक दिन के अंत में अपने कार्य की प्रस्तुतियां देता है। आइए हम उत्पत्ति 1:3-8 में पाएंगे सृष्टि का पहला और दूसरा दिन। बाइबल के विद्यार्थी अक्सर सोचते हैं कि पहले दिन के प्रकाश का स्रोत क्या था, खासकर जब सूर्य का उल्लेख 4th दिन तक नहीं मिलता। क्या पहले दिन का प्रकाश केवल प्रकाश की घटना थी? यह असंभव लगता है क्योंकि प्रकाश निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी के निर्माण से पहले स्वर्ग और अन्य ग्रहों पर मौजूद था। क्या यह एक विकसित सौर प्रकाश था जो किसी प्रकार की वाष्प छतरी को भेद रहा था? यह मानकर चला जाता है कि सूर्य 4th दिन नहीं बना था बल्कि केवल प्रकट हुआ था। यह ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश था। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया और पहला दिन परमेश्वर प्रकाश को बनाया और दूसरा दिन आकाश को बनाया। बाइबल अक्सर ईश्वर को प्रकाश या प्रकाश के स्रोत के रूप में संदर्भित करती है। हम इसे पाते हैं पहला योना 1:5 में। प्राचीन काल में सूर्य, चंद्रमा और तारों को कई लोग दिव्य सत्ताएं मानते थे। इनसे निकलने वाले प्रकाश को इन देवताओं की रचना समझा जाता था। इसमें से किसी भी खगोलीय पिंड से पहले दिन का प्रकाश अलग करके उत्पत्ति 1 का लेखक मूलत उन्हें हर रचनात्मक गरिमा से वंचित कर रहा था। समस्त प्रकाश का परम स्रोत केवल ईश्वर ही है। आकाशमंडल और जल के साथ उसके संबंध के बारे में जो आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:6-8 में, उसे आप कैसे समझते हैं? आपके मन में क्या कोई सवाल आते हैं? कुछ सृष्टिवादियों ने सुझाव दिया है कि आकाश के ऊपर पानी एक उच्च ऊंचाई वाले वाष्प चंदवा को संदर्भित करता है जिसने जल प्रलय से पहले हमारे ग्रह की रक्षा की थी। लेकिन अधिक स्पष्ट समझ यह है कि यह केवल बादलों को संदर्भित करता है। दूसरे दिन परमेश्वर मंच या क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है जिसे वह पांचवें दिन पक्षियों मछलियों और जानवरों का निर्माण करेगा। उत्पत्ति 1:9-13 में हम सृष्टि के तीसरे दिन के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ वर्णित शक्तियां किसी भी भूविज्ञानी की कल्पना को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त हैं, खासकर उन लोगों की जो पवित्र शास्त्र में दृढ़ विश्वास रखते हैं। बाइबल पर विश्वास करने वाले भूविज्ञानी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस शक्तिशाली गतिविधि का कुछ भी भूगर्भीय अभिलेखों में अभी भी देखा जा सकता है, खासकर इसलिए कि जल प्रलय के समय उस अभिलेख का अधिकांश भाग बदल दिया गया था। सूखी भूमि में पेड़ पौधे उगाए गए। सूखी जमीन के उभरने के बाद परमेश्वर ने जमीन को वनस्पतियां उगाने का आदेश दिया, खासकर बीज देने वाले पौधे और फल देने वाले पेड़। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:11-12 पद में, अपने अपनी जाति के अनुसार उन्हें होने के लिए सृजा गया। कुछ लोगों ने अंग्रेजी में उस अभिव्यक्ति को जिसमें इन पौधों को अपनी अपनी प्रजातियों के अनुसार उपज देने वाला बताया गया है उनकी स्थिरता की पुष्टि करने के एक तरीके के रूप में देखा है कि परमेश्वर द्वारा मूल प्रजातियों की रचना के बाद से कोई नई प्रजाति अस्तित्व में नहीं आई है। बाइबल लेखक परमेश्वर को ही इस ग्रह की सभी चीजों का एकमात्र रचयिता मानता है, ना तो मूर्ति पूजक देवताओं को और ना ही प्राकृतिक प्रक्रियाओं को। सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की भूमिका का अतिक्रमण करने की अनुमति है। आई हम उत्पत्ति 1:14-25 में देखकर सृष्टि के चौथे से छठे दिन क्या हुआ उसके विषय में जाने। इसमें परमेश्वर पृथ्वी को भरने का काम करता है। उत्पत्ति 1:14-19 में सूर्य और चंद्रमा को नाम नहीं दिए गए हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दूसरे देशों के देवताओं के नाम से मिलता है, लेकिन इब्री लोग परमेश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं और इसीलिए वह उन्हें बड़ा ज्योति और छोटा ज्योति कहकर उसे दर्शाए। हिब्रू के कुछ छात्रों ने नोट किया है कि बनाया के लिए हिब्रू शब्द आशा वही शब्द नहीं है जो पहले के छंदों में बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 12, शायद इरादा यह नहीं है कि सूर्य चंद्रमा और सितारों को चौथे दिन बनाया गया था, बल्कि इस दिन उन्हें उनके कार्यों के लिए नियुक्त या सेट किया गया था। ईश्वर अभी भी अंततः उनके निर्माता थे। प्रकाश और अंधेरे के दैनिक चक्र को चिन्हित करने के लिए पहले दिन प्रकाश की आवश्यकता थी। हालांकि वह स्थान जहां सूर्य और चंद्रमा निवास करेंगे तब तक प्रदान नहीं किया गया था जब तक कि दूसरे दिन आकाश का निर्माण नहीं किया गया था। सूर्य चंद्रमा और सितारे चौथे दिन अपने नियुक्त तरीके और स्थान पर काम करना शुरू कर देंगे। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि सर्वोत्तम अनुवाद का अर्थ यही है कि सूर्य और चंद्रमा चौथे दिन पहली बार अस्तित्व में आए। भले ही इस पाठ का सर्वोत्तम अनुवाद यह हो कि सूर्य और चंद्रमा चौथे दिन अस्तित्व में आए, फिर भी कई विद्वानों का मानना है कि हिब्रू भाषा से संकेत मिलता है कि तारों की रचना पहले ही से हो चुकी थी। एलन वाइट इस ओर इशारा करती प्रतीत होती हैं कि अन्य तारों और यहाँ तक कि बुद्धिमान प्राणियों वाले ग्रहों की रचना हमारी पृथ्वी से पहले हुई थी, इसलिए कुछ तारे चौथे दिन से पहले अस्तित्व में रहे होंगे। पांचवें और छठे दिन की गतिविधियों का वर्णन हम उत्पत्ति 1:20-25 में पाते हैं। सृष्टि के क्रम को जारी रखते हुए जहां पहले से तीसरे दिन तक चौथे से छठे दिन बनाए गए जीवों के लिए वातावरण तैयार किया गया, पांचवें दिन परमेश्वर ने उस मंच को भर दिया जो उसने दूसरे दिन तैयार किया था। सृष्टि के सममित क्रम का समापन छठे दिन होता है जब सभी जानवर उस भूमि को भरने के लिए उत्पन्न होते हैं जिसे परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया था। परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की, पशु जीवन की विविधता व्यापक रूप से समावेशी है। यीशु मसीह हमें कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:14 में। यीशु जीवन में बड़ी ज्योति और हमें छोटी ज्योति होने के लिए कहता है। यहाँ मानव जाति की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई है, उत्पत्ति 1:26-29 में, और ईश्वरीय अभिलेख इतना स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गलत निष्कर्ष निकालने का कोई अवसर नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही छवि में बनाया, बाइबल कहती है। यहाँ कोई रहस्य नहीं है, इस अनुमान का कोई आधार नहीं है कि मनुष्य पशु या वनस्पति जीवन के निम्न रूपों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। बाइबल कहती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, नर और नारी बनाया। आदम और हवा की कहानी की ऐतिहासिक सटीकता धर्मशास्त्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम उत्पत्ति 1 और 2 में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की स्पष्ट शिक्षाओं में से एक यह है कि मनुष्य ईश्वर द्वारा एक रचनात्मक कार्य के रूप में प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व में आए। यह मानव जाति की विकासवादी उत्पत्ति के प्रचलित सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। यदि सभी मनुष्य किसी वास्तविक ऐतिहासिक प्रथम दंपति के वंशज नहीं है, तो पतित हुए और जिन्हें मुक्ति की आवश्यकता थी, तो ईसाई धर्म का सार और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु की हमारी आवश्यकता गंभीर रूप से छीन हो जाती है। प्यारो, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के स्वरूप में सृजित होने का अर्थ क्या है? क्या यह शारीरिक या आध्यात्मिक समानता की ओर संकेत करता है? पुराने नियम के टीकाकार गेरहार्ड वॉन रेड ने सही ही समझा कि यहाँ दोनों का ही अभिप्राय है। इस दृष्टिकोण का समर्थन एलन व्हाइट ने भी किया है। मनुष्यों को परमेश्वर का स्वरूप धारण करना था, बाह्य समानता और चरित्र दोनों में। उसका स्वभाव परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप था, उनका मन ईश्वरीय बातों को समझने में सक्षम था। बहन एलन व्हाइट कहती है पैट्रियार्क्स ऑफ प्रोफेट्स पुस्तक में, उसका पृष्ठ 45 में, सृष्टि के पहले 3 दिनों की तुलना अंतिम 3 दिनों से हम करें। चौथे दिन का पहले दिन से क्या संबंध है? पांचवें दिन का दूसरे दिन से, छठे दिन का तीसरे दिन से। पहले 3 दिनों में परमेश्वर ने आवास बनाए, दूसरे 3 दिनों में उसने उन्हें आबाद कराया। संसार के अनिश्चित काल में निर्मित होने के संबंध में कुतर्क शैतान के झूठों में से एक है। परमेश्वर मानव परिवार से ऐसी भाषा में बात करता है जिसे वे समझ सकते हैं। जब प्रभु घोषणा करते हैं कि उन्होंने 6 दिनों में संसार बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, तो उनका तात्पर्य 24 घंटों के दिन से है जिसे उन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त द्वारा चिन्हित किया है। प्यारो, बाइबल के साक्ष्य के अनुसार उत्पत्ति के लेखक ने सृष्टि को एक ऐसी घटना के रूप में वर्णित करने का इरादा किया था जिसमें 6 शाब्दिक दिन लगे और सभी चीजें परमेश्वर के बोले गए वचन की शक्ति से अस्तित्व में आए। हमारा परमेश्वर सामर्थी और महान शक्तिशाली परमेश्वर है। हम उसके शक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर अपने शक्ति के द्वारा हमें बनाया है और हमारा ग्रह, हमारा पृथ्वी को बनाया है और अपने वचन से ब्राह्मण को बनाया है। पिता प्यारो, हम पिता परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, उसके वचन पर भरोसा कर सकते हैं और उसके पीछे चल सकते हैं। उसका इच्छा है हमें विकसित करना, आत्मिक तौर से विकसित करना और उसके प्यार को जानना और उसके समान अपना चरित्र बनाना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह सब संभव है। आइए हम परमेश्वर के महान कार्यों पर मन लगाए और सोचे और उसको धन्यवाद दें और उसके पास आए, उस पर विश्वास करें और उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वह हमारा बनाने वाला है और हमारा सब कुछ जानता है। वह हमारा भलाई के लिए ही सोचता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं, हम सबों को तो ग्रहण कर, हम सबों को तेरे नज़दीक ला और तेरे राह में चला। पिता परमेश्वर, हमको तेरे वचनों पर भरोसा रखने और उसके कहे हुए बातों के पीछे चलने के लिए मदद कर। हमें तेरे इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद कर पिता, हमें तेरे इच्छा के अनुसार बना और तेरे राज के लिए सुना ग्रहण कीजिए। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।